SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक हालिया बयान में भारत को ज़ेनोफोबिक करार दिए जाने पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत पूरी दुनिया में सबसे खुला और एक बहुलवादी और सहिष्णु समाज है।
भारत ऐसा देश है, अगर आप पूरे दुनिया में ढूंढे ना, हम सबसे माने वी आर द मोस्ट ओपन सोसाइटी। आज तक मैंने इतना ओपन सोसाइटी, इतना प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, इतना डाइवर्स सोसाइटी कभी देखा नहीं। तो मैं ये कहूँगा दैट वी आर एक्चुअली नॉट जस्ट नॉट ज़ेनोफोबिक, वी आर द मोस्ट ओपन, मोस्ट प्लूरलिस्टिक एंड इन मेनी वेज हियर the most understanding society in the world।
कनाडा और भारत के रिश्तों में एक बार फिर खटास बढ़ती नजर आ रही है। कनाडा ने न केवल अपनी एक रिपोर्ट पब्लिक इंक्वायरी इनटू फॉरेन इंटरफेरेंस इनटू फेडरल इलेक्टोरल प्रोसेसेस एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में उसकी संघीय चुनावी प्रक्रियाओं में भारत द्वारा दखल दिए जाने की संभावना व्यक्त की है, बल्कि खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या केस में 3 भारतीय मूल के लोगों को गिरफ्तार कर कहा है कि वे संदिग्धों के भारत संबंधों के बारे में जांच कर रहे हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस मुद्दे पर कनाडा में जो कुछ भी हो रहा है वो वहाँ की आंतरिक राजनीति के कारण है और इसका भारत से कोई लेना देना नहीं। श्री जयशंकर ने कहा कि हमारे मना करने के बावजूद उन्होंने भारत से, विशेष रूप से पंजाब से, संगठित अपराध को कनाडा में आने की अनुमति दी है।
ओके, आई मीन somebody may have been arrested, their police may have done some investigation, but number of gangland people, number of people with organized crime links from Punjab have been made welcome in Canada. We have been telling Canada saying, look, these are wanted criminals from India. You have given them visas, you let they have come, many of them in false documentation, and yet you allow them to live there. If you decide to import for political purposes people with very dubious, actually very negative background, there will be issues. You know, they have in some cases created problems in their own country as a result of their own policies. Now, why would we fear? I mean, if something happened there, it is for them to worry about.
बहरहाल लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्ष पर हमला बोलने के साथ साथ जनता से भारत का पूरे विश्व में डंका बजने की बात कहकर भी वोट मांग रहे हैं।
कालखंड ऐसा आया है जब भारत फिर से अपनी सारी बेड़ियां तोड़कर उठ खड़ा हुआ है। आज भारत की दुनिया में जो साख है ना, वो नई ऊंचाई पर है। आज भारत चांद पर पहुंच गया है जहां कोई नहीं पहुंचा। 10 साल पहले हम दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे। सिर्फ 10 साल में हम दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं।
जम्मू के सीमावर्ती पुंछ जिले के सुरनकोट में शनिवार को उग्रवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 1 सैनिक की मृत्यु हो गई और 4 सैनिक घायल हो गए। यह क्षेत्र अनंतनाग राजौरी लोकसभा का हिस्सा है, जहां 25 मई को 6ठे चरण में मतदान होना है। इस हमले ने केंद्र की मोदी सरकार के शांति बहाली के दावों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, मैं इसे सुरक्षा विफलता नहीं मानता, यह इस जगह की असलियत है। भाजपा ने उग्रवाद की कमर तोड़ने का दावा किया, लेकिन हमने बार बार कहा है कि वे सच्चाई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, और सच्चाई यह है कि दुर्भाग्य से जो क्षेत्र आतंकवाद से मुक्त हो गए थे वह हम फिर से आतंकवाद देख रहे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पुंछ हमले को भाजपा की एक सोची समझी चुनावी साजिश बताया।
ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं, ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है। इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है।
भाजपा के कई नेता श्री चन्नी के बयान को पाकिस्तान की साजिश पर पर्दा डालने की कोशिश और देशद्रोह बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने श्री चन्नी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बिना शर्त माफ़ी मांगने को कहा है। कर्नाटक में दूसरे और अंतिम दौर के मतदान 7 मई को हैं, लेकिन सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन अपराध के आरोपी जनता दल सेक्युलर के सांसद और वर्तमान उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के पिता HD रेवन्ना की भी एक यौन अपराध के मामले में गिरफ्तारी ने भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल JDS की चुनावी दिक्कतों को और बढ़ा दिया है। श्री रेवन्ना JDS प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के बेटे हैं। गिरफ्तारी के डर से प्रज्वल पहले ही जर्मनी भाग चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ समय पहले ही प्रज्वल के समर्थन में वोट भी मांगे थे, जिस कारण वे कांग्रेस के निशाने पर हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने रविवार को प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री मोदी से दो टूक सवाल पूछे।
देश के हर कोने से ये आवाज उठने वाली है और ये आवाज तब तक उठेगी प्रधानमंत्री जी, जब तक आप प्रज्वल रेवन्ना को जर्मनी से वापस भारत लाके कर्नाटका की सरकार को नहीं सौंप देते। ये आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की सारी प्रदेश इकाइयां पूरे देश में आंदोलन करेंगी, धरना प्रदर्शन मशाल जुलूस निकालेंगे, राजभवनों का घेराव करेंगे, राष्ट्रपति जी को पूरी मिलने की कोशिश हिमाचल में की जाएगी। हम दोबारा दोहराते हैं प्रधानमंत्री जी, आप ही की बात को, आप ही ने कहा था कि जब तक फांसी की सजाएं नहीं होंगी तब तक डर पैदा नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी, आपका इम्तिहान शुरू होता है अब।
भारत में लोकसभा चुनाव अपने तीसरे दौर में हैं, लेकिन राजनेताओं द्वारा दल बदलने का दौर थमने में नहीं आ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि पार्टी न छोड़ने की कस्में खाने वालों के रुख का भी पता नहीं चल पा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने पद छोड़ते हुए किसी भी पार्टी में न शामिल होने की बात कही थी, लेकिन शनिवार को वे 4 और कांग्रेसी नेताओं के साथ भाजपा में शामिल हो गए। जब उन्हें भाजपा द्वारा गुलदस्ता भेंट किया जा रहा था, उसी समय NCP के दिल्ली अध्यक्ष योगानंद शास्त्री के फिर से कांग्रेस में शामिल होने की खबर आ गई। यह खबर गर्म ही थी कि रविवार को हरियाणा में आम आदमी पार्टी के सह संयोजक दिनेश प्रताप सिंह कई अन्य पार्टी नेताओं के साथ भाजपा में शामिल हो गए। रविवार को ही कांग्रेस को झटका देते हुए उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल उनकी किसी अन्य पार्टी में शामिल होने की खबर नहीं आई है। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।